नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंद 19वां अध्याय श्लोक नंबर 10।
तम उसको नर नारायण भगवान अत्यंत शक्तिशाली संत पुरुष नारद ऋषि नारद वर्णाश्रम वतिभी चारों वर्ण तथा चारों आश्रम के अनुयायियों द्वारा भारती भी भारतवर्ष नामक देश के प्रजा भी वासियों द्वारा भगवत प्रोक्तभ्याम श्री भगवान द्वारा कथित सांख्य योग द्वारा भौतिक गुणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन योगाभ्याम योग के अभ्यास द्वारा भगवत अनुभाव उपर उपवर्णम जो भगवत प्राप्ति की क्रिया को बताता है सार्वणे सार्वणी मुनि को उपदेक्षमान उपदेश करते हुए परम भक्ति भावे अत्यंत भक्ति भाव से उपसरती भगवान की सेवा करता है इदम् इसे च तथा अभिग्रणाति जप करता है। अनुवाद बाय डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ में भगवान नारद ने अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार ज्ञान तथा योग क्रिया के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है। महर्षि नारद ने इस दिव्य साहित्य का उपदेश सावर्णी मुनि को दिया जिससे वह भारतवर्ष के उन वासियों को भगवान की भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दे सकें जो दृढ़ता पूर्वक वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि भारतवर्ष के अन्य निवासियों सहित नर नारायण की सदा सेवा करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जप करते रहते हैं। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट घोषणा की है भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक कर करी कर परोपकार। भारतवर्ष में मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अथवा वास्तविक सफलता सहज ही प्राप्त की जा सकती है क्योंकि भारतवर्ष में जीवन उद्देश्य तथा सफलता प्राप्ति की विधि सुस्पष्ट है। भारतवर्ष में प्राप्त होने वाले सुअवसर का लाभ लोगों को विशेष रूप से उनको जो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने वाले हैं उठाना चाहिए। यदि हम वर्णाश्रम धर्म के नियमों को च चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र चारों आश्रमों ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास को स्वीकार करते हुए पालन नहीं करते तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु की हानि हो रही है। भारतवर्ष के वासी धीरे धीरे पतित मलेच्छ तथा यवन बनते जा रहे हैं, तो फिर वे दूसरों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को न केवल भारतवासियों के लिए वरन समस्त विश्व के मनुष्य के लिए चलाया जा रहा है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है, अब भी समय है और यदि भारतवासी इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें तो सारा जगत अधोगति को प्राप्त होने से बच सकता है। यह आंदोलन पंचरात्रिक विधि के साथ ही भागवत विधि का पालन करता है, जिससे मनुष्य को इस आंदोलन का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बना सके। अनुवाद एक बार फिर से। नारद पंचरात्र नामक अपने ग्रंथ में भगवान नारद ने अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार ज्ञान तथा योग क्रिया के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है। महर्षि नारद ने इस दिव्य साहित्य का उपदेश सावर्णी मनु को दिया था, जिससे वह भारतवर्ष के उन वासियों को भगवान की भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दे सकें जो दृढ़तापूर्वक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि भारतवर्ष के अन्य निवासियों सहित नर नारायण की सदा सेवा करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जप करते रहते हैं।
हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्य मनोव्यस्तां स्थापितां येन भूतले रूपा। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण। इस अध्याय में आप पढ़ते हो कि जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म लेते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है और भगवान ने संक्षेप में 7 श्लोकों में भगवान रामचंद्र के विषय में उपदेश दिया जाता है। इन श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान राम स्वयं भगवान हैं और हमें उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। आज भी प्रजा राम राज्य की चर्चा करती है। लोग राम राज्य की चर्चा क्यों करते हैं? राम राज्य के समय समाज में पूरा सुख था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी और इसलिए राम राज्य की चर्चा करते हैं, राम राज्य का स्मरण करते हैं। तो आगे जाकर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले वह अत्यंत भाग्यशाली है। तो आज के श्लोक में क्या उपदेश दिया जा रहा है? आज के श्लोक में उपदेश दिया जा रहा है नारद पंचरात्न में नारद मुनि भक्ति योग की चर्चा कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में 12 महाजन है, संभो नारद संभो कौमार कपिल मनु साधो जनक भीष्मो बलिर भाई ऐसा केवल जिनमें एक है नारद मुनि। और नारद मुनि ने अपने ग्रंथ में भक्तियों की महिमा का गुणगान किया है। श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक यही शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया जा रहा है। व्यासदेव ने सब ग्रंथों की रचना की थी और उनके सार को प्रस्तुत किया था। और व्यासदेव जब भी ये महसूस कर रहे थे क्योंकि कार्य में कुछ कमी रह गई है, जब वो ये विचार कर रहे थे तो वहाँ नारद मुनि पहुंचे, जिन्होंने कहा कि तुम्हें शुद्ध भक्ति पर केवल बल नहीं दिया, जिसके पश्चात उन्होंने हमें ये श्रीमद् भागवत का ग्रंथ दिया। और श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक एक ही विषय का उपदेश दिया जा रहा है, शुद्ध भक्ति। और भागवतम के द्वारा ये संदेश आपको बार बार सुनने में मिलता है। बार बार सुनना आवश्यक है क्योंकि माया का इतना तेज प्रभाव रहता है कि अगर हम कुछ सुने आज कल भूल जाते हैं। इसीलिए भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है नास्ता परेशु अवधेशु नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति भावती नैसे कि हमें नियमित रूप से भागवत का अध्ययन रोज करना चाहिए। और अगर हम रोज करेंगे और सुनेंगे तो ये भक्ति की भावना जो है हृदय में मजबूत होकर स्थापित होगी और जो माया का आकर्षण है वो आस्ते आस्ते नष्ट होगा। इसीलिए इस्कॉन केंद्र में भी भगवत गीता का रोज अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि नारद मुनि ने ये शिक्षा दी है नारद पंचरात्र में कि भक्तियों का पालन कैसे किया जा सकता है और परम भगवान का गुणगान। सो भक्ति योग का अर्थ है परम भगवान का गुणगान करना। ये है भगवद गीता का निर्णय, ये है भगवतम का निर्णय। और परम भगवान का गुणगान हम कैसे करते हैं, हमें भगवतम के सातवें स्कंद में नवदा भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। जब हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे से पूछा ये बताओ क्या शिक्षा प्राप्त की है, अपने पाठशाला में उन्होंने श्रवणम कृष्ण विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आश्रम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदन नौ नवदा भक्ति का वर्णन किया। तो जब हम भक्ति योग या भक्ति शब्द का उपयोग करते हैं उसका अर्थ है शास्त्र की विधियों के अनुसार भक्ति का पालन करना। और ये ज्ञान केवल भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। ब्रह्मांड प्रभावित कुरु भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति। जैसे चैतन्य चैतन्य में कहा गया है अनेक जन्म विद्या के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे ये ज्ञान मिलता है भक्ति की महिमा का। और जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये भक्ति का ज्ञान भक्ति का बीज उगेगा कब, जब आप पानी पिलाओगे या श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। तो यहाँ कहा जा रहा है कि परम भगवान का के गुणगान भक्ति योग की महिमा शास्त्र में प्राप्त होती है नारद पंचरत्न में। और नारद मुनि सुवर्णा ऋषि मुनि को कहते हैं कि जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म लेता है वो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली है, आप कहोगे। हम तो सोच रहे थे कि जो व्यक्ति अमेरिका में जन्म ले वो भाग्यशाली है, ये आपने कहां से कह दिया जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले। तो इस अध्याय में अनेक श्लोक हैं जिनमें आप इस विषय का ज्ञान प्राप्त करते हो कि जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले वो अत्यंत सौभाग्यशाली है। और महाप्रभु ने इस विषय में क्या कहा है, प्रभा जी तात्पर्य में इसका वर्णन करते हैं। भारत भूमि ते हैरा मनुष्य जन्म हैरा जन्म सथा का कहीं करो पारा। जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना उद्धार और दूसरों का उद्धार। ये आदेश कौन दे रहा है, चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नारद मुनि ने सुवर्णी मणि मनु ऋषि को ये उपदेश दिया कि जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले, जो वर्णाश्रम का पालन करे, उसे वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में भक्ति के नियमों का पालन, चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुणाकर्मा विभाग। वैदिक शास्त्र में शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज का विभाजन चार वर्ण और चार आश्रमों में होना चाहिए। चार आश्रम क्या हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचारियों का होना आवश्यक है। ब्रह्मचारी जीवन में हम गुरु की सेवा करते हैं, सारा जीवन बिताते हैं और प्रचार की सेवा में जुड़ते हैं। गृहस्थ आश्रम में हमें रहना चाहिए शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर। भगवतम के साथ में स्कल में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा। आप भगवतम और गीता में देखते हो अनेक प्रश्न और उत्तर। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न ये था, ये शिक्षा दीजिए कि हम गृहस्थ जो कि हम गृहस्थ व्यक्ति कैसे शास्त्र के आधार पर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न ये था, हम सब जो गृहस्थ आश्रम में हैं कैसे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये कहो युधिष्ठिर महाराज को इस प्रश्न की क्या आवश्यकता, युधिष्ठिर महाराज ने यह प्रश्न पूछा है हमारी भलाई के लिए। जिस प्रकार अर्जुन ने अनेक प्रश्न पूछे और परीक्षित महाराज ने अनेक प्रश्न पूछे, तो ये प्रश्न था कि गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ आश्रम में जो हैं कैसे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तर में नारद मुनि ने कहा गृहस्थ को धन कमाना पड़ता है पर साथ में श्रवणम कीर्तनम और कृष्ण कथा का श्रवणम करना चाहिए और साधु संग में रहना चाहिए। तो इस वातावरण में अगर हम रहेंगे और भक्ति का पालन करेंगे तो गृहस्थ आश्रम में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो एक ब्राह्मण खुरमा के घर में रुके। खुरमा ब्राह्मण ने उनके चरण धोए और आगे कहा कि मैं घर छोड़कर आपके साथ यात्रा में जाना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा नहीं, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, हरे कृष्ण का जाप करो, गीता भगवत का ध्यान करो और प्रचार करो, इस प्रकार तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये उपदेश वही उपदेश है जो नारद मुनि ने सातवें स्कंध में दिया। फिर वानप्रस्थ व्यक्ति घर के बाहर रहता है, यात्रा करता है, धर्म के कार्य में जुड़ा रहता है, और सन्यास सोशली डेड, मतलब कि जो तन मन धन से जुड़ा है भगवान की सेवा में। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र की तुलना की जाती है शास्त्र में पैरों के साथ, जिस प्रकार पैर पूरे शरीर का बोझा उठाते हैं, शूद्र का वर्णन का ये प्रयास होना चाहिए कि वो तीन वर्ण की सेवा करे। फिर वैश्य, वैश्य का क्या कार्य रहता है, खेती बाड़ी, खेती और व्यापार, और वैश्य की तुलना की जाती है पेट के साथ। फिर क्षत्रिय जो शासन करते हैं, दयालु होते हैं, और बूढ़े व्यक्ति और बच्चों की सुरक्षा की देखभाल करते हैं। और फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण की तुलना की जाती है सिर के साथ, जिस प्रकार आप कभी किसी को देखते नहीं हो सिर के बिना, जिस समाज में ब्राह्मण नहीं हो उस समाज में कभी शांति नहीं आ सकती। तो ब्राह्मणों की तुलना की जाती है सिर के साथ, और ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य बनता है कि समाज को आध्यात्मिक शिक्षा दे। प्राचीन समय में जो राजा होते थे सबके पास ब्राह्मण होते थे सलाह देने के, पर ये जो शुद्ध ब्राह्मण हैं वो धन कमाने के लिए ब्राह्मण नहीं बनते। ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन भगवत गीता में है, शमो दमो तपो सोचम शांति राज्य में बचा ज्ञानम ज्ञानम हस्ते क्या ब्रह्मा कर्म स्वभाव। तो यहां कहा जा रहा है कि वर्णाश्रम के पालन से आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। हमारा सिद्धांत है देवा वर्णाश्रम। देवा वर्णाश्रम का अर्थ है चाहे आप ब्रह्मचर्य हो या गृहस्थ हो या सन्यासी, हम सबका लक्ष्य यह है कि हम वो कार्य करें जो भक्ति के लिए अनुकूल है और उस कार्य को त्यागें जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि मनुष्य जीवन का पालन, मनुष्य जीवन के द्वारा जीवन के लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हो इस वर्णाश्रम के द्वारा। आगे जाकर प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग के प्रभाव के कारण भारत भूमि में आज हम क्या देखते हैं, देवा वर्णाश्रम का सिद्धांत का प्रचार नहीं, हम क्या देखते हैं समाज में, भारत में क्या देखते हो? हाँ, आप देखते हो कि कलयुग का बड़ा तेज प्रभाव है। प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कलयुग के प्रभाव के कारण भारतवर्ष के जो प्रजा है लगभग क्या बन गई है, मृच्छा और यावना। एक समय किसी ने भारत में प्रभुपाद से पूछा स्वामी जी आप कुछ जादू कर सकते हो या चमत्कार दिखा सकते हो, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि साधु है महात्मा है तो चमत्कार भी दिखाएगा या जादू करेगा। प्रभुपाद ने कहा नहीं, कोई जादू नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। तो उस व्यक्ति में बड़ी रुचि थी, क्या जादू आपने किया है? मैंने हजारों नेचो यावनों को ब्राह्मण बना दिया है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कलियुग के प्रभाव के कारण प्रजा भारत की यावन और नेचो के समान बन गई है। तो वो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे जब हम खुद ही इस शिक्षा को नहीं अपनाएं, तो दूसरों को क्या देंगे? हमारे एक भक्त ट्रेन में जा रहा था, जप कर रहा था, उसका पड़ोसी ने सोचा इसका हाथ टूट गया है। वो पूछने लगा, हाथ टूट गया आपका? तो उसने समझ लिया, नहीं जी मैं जप कर रहा हूँ। तो ये उदाहरण इसलिए है, हम देख सकते हैं कि लोग कितने अज्ञानता में हैं, कितने अज्ञान में हैं। हमारा एक मंदिर है जिसके पड़ोसियों ने कई बार पुलिस केस किया है। क्या है हमारा दोष? कीर्तन बहुत ऊंची आवाज आती है, दिनरात कीर्तन करते हैं। यही हिंदू लोग थे जिन्होंने ये शिकायत की। ये है एक छोटा सा नमूना। तो प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना हुई है, भारत और सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। और प्रभुपाद जी आगे जाके कहते हैं, अगर इस संस्था के भक्त प्रचार करेंगे तो सारे विश्व का उद्धार होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हम भक्तों के लिए। प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था पश्चिम देशों में प्रचार करने के लिए। तो विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी ने भारत में प्रयास किया कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए, पर उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। विदेश में पहुंचने के पश्चात प्रभुपाद ने पहले इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, कई स्थानों में मंदिर खोले। उसके बाद प्रभुपाद जी ने कहा मुझे भारत में आना चाहिए। हालांकि उनके गुरु के आदेश था पश्चिम देशों में ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी संदेश को, क्योंकि प्रभुपाद जी ने देखा कि भारतवासी भी अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी, अगर प्रभुपाद जी भारत में नहीं आते, कृष्ण भक्ति की स्थापना नहीं करते, तो आज इस देश में माया का प्रभाव और भी तेज होता। तो प्रभुपाद जी ने फिर भारत में आकर ये प्रचार शुरू किया और आज आप देख सकते हो इस कारण के प्रचार के कारण हजारों हजारों लोग भारत में भी उनका उद्धार हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश था पृथ्वी से आते जैसा नगर आदेगा, विश्व के हर कोने कोने में यह हरि नाम पहुंचेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परम गुरु, उन्हें पूरा विश्वास था महाप्रभु की भविष्यवाणी सफल होगी। उन्होंने अपने कई सन्यासी शिष्यों को भेजा था विदेश में प्रचार करने के लिए, पर बिना अधिक सफलता के उन्हें भारत लौटना पड़ा। तो हमारे घोड़िया वैष्णव भी कहने लगे, हाँ महाप्रभु का संदेश आदि भविष्यवाणी तो है, कलयुग के प्रभाव के कारण लगता है सफल नहीं होगा। तो भक्ति सिद्धांत जी को पूरा विश्वास था और 1922 में जब प्रभुपाद जी पहली बार मिले तो उन्होंने पहली मुलाकात में ही पहचान लिया ये है वो युवक जो कि चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को पूरा करेगा। तो पहली मुलाकात में ही उन्होंने आदेश किया। तो प्रभा जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भारतवासी जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले उसे वैदिक संस्कृति का पालन जरूर करना चाहिए। और जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म लेता है वो भाग्यशाली इस रूप से माना जाता है कि बचपन से ही उसे हरि नाम सुनने का मौका मिलता है, बचपन से ही उसे महाभारत रामायण इत्यादि के ग्रंथों का उपदेश सुनने में आता है। पर हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम इसके महत्व को भूल रहे हैं। हमारी नास्तिक सरकार और समाज में शुद्ध प्रचारकों की कमी के कारण आप इस देश में क्या देखते हो, बिल्कुल माया का प्रभाव। आप भारत के किसी कोने में जाओ, माया का प्रभाव दिखता है या नहीं? हमारे विदेशी भक्त कई बार जब वृंदावन आते हैं वो कहते हैं हम तो धाम में आए हैं पर यहाँ का वातावरण धाम है, हमारे देश ऐसे दिखता है, सिगरेट की दुकान, बीड़ी की दुकान, सिनेमा हॉल वगैरह। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मंडल की स्थापना की है किस लिए, किस लिए? लोगों का, भारतवासियों का उद्धार करने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए। और फिर भारतवासी सारे विश्व में जाए इस संदेश को लेकर। तो जैसे कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने लिखा अनेक पत्र सरकार के अधिकारियों को कि आप एक भगवद गीता का डिपार्टमेंट बनाओ जहाँ की गीता की शिक्षा दी जाए छोटी आयु से। अफसोस की बात है किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तो जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म लेते हैं वो अत्यंत सौभाग्यशाली है। आगे के श्लोकों में कहा गया है जो देवता हैं वो भी तरसते हैं कहाँ जन्म लेने के लिए, देवता वो भी तरसते हैं। तो इसलिए भारतवासियों को माया से बचना चाहिए, भारतवासियों को इस शिक्षा का पूरा लाभ उठाना चाहिए। शास्त्र में जो भारतवासियों के विषय में कहा गया है उसका हमें पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये इस्कॉन संस्था सारे विश्व का उद्धार करेगी। ये जो प्रचार की सेवा है जिस पर इतना बल दिया जाता है हमारे शास्त्रों में, ये सेवा किस लिए है? क्योंकि प्रचार के माध्यम से आप दुखी लोगों को सुखी बना सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, तो मैं यहाँ प्रचार करता है। तो भारतवासियों के ऊपर एक खास जिम्मेदारी है और इस अध्याय के अनेक श्लोकों में प्रभा जी एक ही विषय की स्थापना कर रहे हैं कि भारतवासियों को अपना उद्धार करना चाहिए और दूसरों का। अपना उद्धार का क्या मतलब? नियमों का पालन, हरिनाम का उच्चारण, शास्त्रों का अध्ययन, फिर उद्धार होगा। और दूसरे शब्द में हमें आध्यात्मिक शिक्षा को यथारूप स्वीकार करना चाहिए। यथारूप स्वीकार करेंगे भक्ति की भावना जागृत होगी और भक्ति के प्रति उत्साह बढ़ेगा। तो आज अगर आप भारतवासियों से पूछो वो क्या करना चाहते हैं, सबका क्या लगभग 99% लोगों का क्या होगा, वो सर हमें माया चाहिए, हमें इन धन चाहिए। धन क्यों चाहिए? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति का साधन मानता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भारतवासियों का क्या जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी है कि वैदिक शिक्षा का पालन करें, पालन ही नहीं करें पर प्रचार भी करें। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम ये संस्था के माध्यम से सारे विश्व की प्रजा का उद्धार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चाहे दाखोता है कहो जैसे भी तो बेरो से याद करो कृष्ण को प्यार। तो आप सबका कर्तव्य के विषय में भगवत में उपदेश दिया जाता है। और ऐसे अध्याय आप सबको, आप ऐसे कितने भक्तों के पास घर में भगवतम सेट है, आपको आज लौट कर पांचवें स्कंद का 19वां अध्याय पढ़ना चाहिए। आप देखोगे अनेक श्लोकों में भारत भूमि में जन्म लेने की महिमा का गुणगान है, और अनेक श्लोकों में ये कहा जा रहा है भारतवासियों का, भारतवासियों को उद्धार करना है अपना भी और दूसरों का भी। तो ये उद्धार कैसे होगा? ये उद्धार होगा अगर इस्कॉन के भक्तों में प्रचार के का भावना हो। आज अगर आप भारत में देखो कितने लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं शुद्ध धर्म का, आपको इस्कॉन के अलावा बहुत कम भक्त मिलेंगे जो कि शुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। क्या लक्ष्य? कि हम कृष्ण भक्ति के साथ जुड़ें, हम अपने जीवन को सुधारें, फिर आप दूसरे के जीवन को सुधार सकोगे। अगर हम खुद विधियों का पालन नहीं करें तो हम दूसरों को क्या कह सकते हैं? दूसरों को कुछ नहीं कह सकते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमें हमारे आचरण के द्वारा धर्म के नियमों का संदेश प्रस्तुत करना चाहिए। तो भारतवासियों को इस शिक्षा का पालन करना चाहिए और इस्कॉन के भक्तों के द्वारा ये प्रचार के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। प्रभुपाद जी भारत में आए, ऐसे ऐसे प्रचार बढ़ा और आज लाखों लोग जुड़े हैं। तो हर साल गीता जयंती के उपलक्ष हमारे भक्त क्या करते हैं? इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ग्रंथों का वितरण, मैराथन की सेवा। तो मैराथन की सेवा का क्या मतलब? हम ये मैराथन का कार्य क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि एक तरफ से आप कह सकते हो प्रभुपाद की इच्छा है, उनके गुरु महाराज का आदेश था, ठाकुर भक्ति विनोद जिन्होंने शुद्ध कृष्ण भक्ति की स्थापना की उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के ऊपर, जो कि 1896 जिस साल प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे वो ग्रंथ उन्होंने भेजा विश्व के अनेक प्रसिद्ध महाविद्यालयों में। दूसरे शब्दों में उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन विदेशों में भी वो महाप्रभु की महिमा को का ज्ञान रखेंगे। और ठाकुर भक्ति ने कहा था जल्द एक सेनापति प्रकट होगा जो कि चैतन्य महाप्रभु संदेश को हर कोने में पहुंचाएगा। वो सेनापति कौन था? तो हम भक्तों को प्रचार की सेवा में जुड़ना चाहिए उत्साह के साथ, क्योंकि एक तो ग्रंथ में उसका वर्णन है, चैतन्य चतुर्विध में वर्णन है, और श्रील प्रभुपाद हमारे आचार्यों ने अपने उदाहरण से इस सेवा की महिमा का वर्णन किया है। भक्तिविनोद ठाकुर ने ग्रंथ भेजे विश्व के प्रसिद्ध महाविद्यालय में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने वो अपने ब्रह्मचारी को भेजते थे ग्रंथों के वितरण की सेवा करने के लिए। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेसेस की स्थापना की, और एक दिन जबकि राधाकुंड में वो यात्रा कर रहे थे, वहाँ प्रभुपाद जी भी उन्हें मिले, और भक्ति सिद्धांत जी ने कहा, एक मृदंगा की तस्वीर खींच कर कहा, अगर भगवान तुम्हें सफलता दे तो क्या करना? ग्रंथों का अनुवाद और वितरण करना। उन्होंने इस सेवा को क्या नाम दिया था? बेहद मृदंगा। साधारण मृदंग की आवाज थोड़ी दूर तक जा सकती है, पर ग्रंथ आप वृंदावन में बांटो, किधर भी बांटो, उसका ध्यान विश्व के दूसरे कोने में भी हो सकता है। तो ये इस भाव हमारे में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे पहली बार, तो उन्होंने विदेश भक्तों को कहा, ग्रंथों को बांटो। तो जो प्रभुपाद के अमेरिकन शिष्य थे, वो जरा बेचैन हो गए थे, बार बार प्रभुपाद कह रहे हैं ग्रंथों को बांटो, पर कैसे बांटें हम? कभी इतिहास में किसी ने गीता भागवतम उस प्रकार नहीं बांटी जिस प्रकार इस्कॉन के भक्तों ने बांटी। तो भक्त सोच रहे थे प्रभुपाद को प्रसन्न कैसे किया जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों को ये सेवा दी। जब उनके शिष्य थोड़े ग्रंथों का वितरण करके लौटते थे, वो बहुत ही खुश होते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास और नित्यानंदा की जोड़ी को कहा, घर घर जाके प्रचार करो। तो वो भक्ति सिद्धांत जी ने आदेश दिया, तो प्रभुपाद जी ने जब भक्तों को कहा विदेशों में ग्रंथों को बांटो, तो ये नहीं समझ आ रहा था कैसे बांटें, कौन लेगा भगवद गीता भागवत वगैरह। पर भक्तों को भी विश्वास था कि प्रभुपाद जी का आदेश है, तो अगर हम बुद्धि लगाएंगे तो कैसे ना कैसे सफल होगा। तो प्रयास करते गए और आस्ते आस्ते ग्रंथों का वितरण बढ़ते गया। भक्तों ने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार हम ग्रंथों को बांट सकेंगे। तो हर साल भारत में भी और सारे विश्व में हमारे भक्त क्या करते हैं, क्या करते हैं? ग्रंथों का वितरण, मैराथन। मैराथन एक अंग्रेजी शब्द है, बन गया है अंतर्राष्ट्रीय शब्द। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हमें सेवा में जुड़े, ग्रंथों के वितरण की सेवा में जुड़े। और ये सेवा जो है सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। जैसे गीता में भगवान ने कहा, सब भक्त सबसे प्रिय कौन है? जो मैं प्रचार कर रहा है। तो ये सेवा इतनी सरल तो नहीं है, क्योंकि जब आप ग्रंथों को बांटने जाते हो, ये नहीं कि हर व्यक्ति कहता है मुझे ग्रंथ दे दो, अनेक लोगों से बात करो, 10 व्यक्तियों से बात करोगे तो एक थोड़ी रुचि पकड़। और भोग क्या कहते हैं, गीता है हमारे पास वगैरह, तो अगर प्रयास करोगे सफलता भी मिलेगी। तो ये ग्रंथों के वितरण की सेवा, इसमें हम सबको जुड़ना चाहिए। पर भगवान आपके प्रयास को देखकर प्रसन्न होते हैं, और महाप्रभु का जो आदेश था जारीदा को साहब को कृष्ण उपदेश, इन ग्रंथों के माध्यम से पूरा हो सकता है। आप कहोगे हम अगर जबानी संदेश दें चलेगा, तो प्रभुपाद ने कहा कि आप कुछ भूलोगे लोग सुनेंगे और भूल जाएंगे, अगर आप उनको ग्रंथ दोगे तो इन ग्रंथों को आज पढ़ेंगे, कल कई उदाहरण हैं कि 6-6, 7-7 साल किसने ग्रंथ नहीं पढ़ा, और 6-7, 8 साल बाद ग्रंथ खोला और प्रभावित होकर भक्ति बन गए। तो आज के संदेश, आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा है कि भारत देश में नीचियों यावनों की संख्या बहुत बढ़ गई है, भारत देश में भक्ति की विद्या का पालन नहीं कर रहा, नहीं हो रहा। तो आप कहोगे फिर हम क्या करें, तो आगे प्रभुपाद जी कहते, तो इसलिए हर भक्त को कृष्ण भक्ति में जुड़ना चाहिए और ये संदेश आगे पहुंचाना चाहिए, और अगर हम प्रयास करेंगे सफलता प्राप्त होगी। जैसे कि एक जमाना था जब इस्कॉन का प्रचार हिंदुस्तान में बहुत थोड़ा था, तो वे भक्तों ने प्रयास किया और लोग जुड़े, और ये ग्रंथों के वितरण के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में बड़ा गहरा ज्ञान। प्रभुपाद ने कहा कोई व्यक्ति अगर एक श्लोक को पढ़ेगा और उसका पालन करेगा जीवन का सफल बना सकता है। आगे प्रभुपाद ने कहा एक श्लोक ही नहीं, अगर एक श्लोक का एक शब्द का अर्थ भी वो समझ जाए, उसका पालन करे, वो जीवन को सफल बना सकेगा। तो हर साल ये अनुभव है कि गीता जयंती के महीने सबका उत्साह बढ़ जाता है, तो हम सबको इस कार्य में जुड़ना चाहिए। कई मंदिर हैं जिन्होंने मैराथन शुरू कर दिया है, तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब जुड़िए इस महत्वपूर्ण सेवा में। ये बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई पढ़ता नहीं कोई नहीं लेगा, नहीं लोग लेंगे। कई बार जब आप जाते हो आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे हम ना देख रहे थे कब इस्कॉन के भक्त आएंगे। जब चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार नित्यानंद और हरिदास घर घर प्रचार कर रहे थे, ये नहीं कि हर एक ने उनका साथ दिया, कई ने साथ दिया और कहा हमारा क्या सौभाग्य है संत महात्मा हमारे घर आ गए हैं, क्या है आपका आदेश। पर कई ने उनकी बेइज्जती भी की, कहा कि भागो हमारी रुचि नहीं है, कई ने उनकी बेइज्जती की, कई ने ये भी कहा कि आप तो चोर डाकू हो आए हो जासूस के रूप में देखने के लिए घर में क्या है, फिर वापस लौट गए। तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम प्रचार में जुड़े, प्रचार करें, और ये गीता जयंती का महीना शुरू हो गया है, कई मंदिरों में मैराथन शुरू हो गई है, और आप सब जिधर से भी आए हो, दिल्ली से आए हो, वृंदावन के हो, जहाँ से भी आए हो, आप सब भी इस सेवा में जुड़े हैं, और इस प्रचार के माध्यम से ही नीचे और यावन ब्राह्मण बनेंगे, नीचे और ब्राह्मणों का उद्धार होगा। आज भारत में हर प्रकार का दूषित कार्य हो रहा है। जैसे गाय का मांस जो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, गाय के मांस का, वो एक हिंदू है, मुसलमान नहीं, तो हर प्रकार का दूषित कार्य हो रहा है। और ये हो रहा है क्यों? क्योंकि हम अज्ञानता में हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से देवा वर्णाश्रम की शिक्षा में प्राप्त हुई है और हमें भक्ति की विधियों का पालन करना चाहिए और प्रचार के कार्य में जुड़ना चाहिए। और जैसे आप गीता में पढ़ते हो, भगवान क्या कहते हैं, जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा में जुड़ने के लिए, उनकी उनमें कुछ कमी भी हो मैं दूर करता हूँ। तो आप सब जुड़ने को तैयार हो? सब जुड़ेंगे मैराथन में? मैंने श्लोक इसलिए पढ़ा क्योंकि इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि इस संस्था के सारे भक्तों को प्रचार करना चाहिए, किस लिए? परिसंग उद्धार करने के लिए, और अपना जीवन भी सुधारना चाहिए। चैतन्य सनातन गोस्वामी ने हरिदास को कहा, कई में प्रचार की योग्यता है, कई प्रचार करते हैं पर उनका आचार नहीं है, वो कई उनका आचार है और पर आप में दोनों ही गुण प्राप्त होते हैं, आचार भी और प्रचार भी। तो इसी प्रकार हम सब में सबका प्रयास रहना चाहिए, हमारा आचार भी हो और प्रचार भी। तो आप सब जुड़िए इस सेवा में, आप सोचोगे कई सालों से हमें सेवा ये सेवा करें, पिछले साल आपने कितने भक्त ने ग्रंथ के वचन की सेवा में सहयोग दिया था? पिछले साल बस कितने हाथ धुलाओ? तो ऐसे देखता है कि कई लगभग 50% भक्तों ने ये सेवा पिछले साल नहीं की थी। तो जिन्होंने नहीं की थी उन्हें सेवा में जुड़ना चाहिए। ये सब अगर आप जानते हो कोई लाभदारी सेवा है तो उसमें तो हमें जुड़ना चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। तो जो नहीं जुड़े थे उनसे विनती कि वो जुड़े, और जो प्रचार की सेवा में जुड़ते आए हैं उनसे निवेदन है कि वो उत्साह से जुड़े। और प्रभुपाद जी ने खुद कहा कि अगर हम उत्साहित होंगे, साधना रखेंगे, तो प्रचार के कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो संक्षेप में आज के श्लोक में, इस अध्याय में, शुक्रदेव गोस्वामी पहले राम जी के विषय में चर्चा करते हैं और ये स्थापित करते हैं कि भगवान राम स्वयं भगवान हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। और आगे जाकर इस श्लोक में, इस अध्याय में ये कहा गया है, जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले बड़ा भाग्यशाली। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज भारत भूमि में हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि पूरी प्रजा नेचर और यावन के समान बन गई है। सच है या झूठ? और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन संस्था की स्थापना हुई है स्पष्ट इस उद्देश्य के साथ कि नेचर और यावन क्या बन जाए, ब्राह्मण बन जाए। और ब्राह्मण कैसे बनेंगे? अगर आप सब प्रचार की सेवा में जुड़ोगे। सब वृंदावन आए थे कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में तुझ सेवा का भी 1000 गुना लाभ मिलता है। अब ये निर्णय कीजिएगा कि हमने भी मैराथन में जुड़ना है, घर घर जाना है प्रचार के लिए, और प्रयास करो ग्रंथों को बांटने के लिए। और आप देखोगे कि अगर आप प्रयास करोगे तो कठिन कार्य सरल हो जाता है। कृष्णदास काविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पास जा सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है और अंधा व्यक्ति। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से असंभव कार्य संभव हो सकता है। आप सब जुड़ोगे? सब कौन कौन जुड़ेंगे इस साल की मैराथन की सेवा में? सब जुड़ोगे पूरे महीने के लिए, यानी कि एक दिन। ओके, हरे कृष्णा।